તારીખ 5/5/1994ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા મુંબઈમાં થયેલ તત્વચર્ચા, સળંગ નંબર 89.
પરમ સુખ એટલે શું? પરમ સુખ માને ક્યા? પરમ સુખ કિસકો કહેતે હૈ? જિસકો ભાવ સુખ પ્રગટ હુઆ હો इसके मानी को परम शुद्ध कहने में, यानी जिसके वाणी में परम पदार्थ सुनाया जाता है आत्मधान पूर्वक, किसी को भी परम शुद्ध कहने में आता है। श्रुत मैंने श्रुत ज्ञान जिन वाणी, उसको भी परम शुद्ध कहने में आता है। ज्ञानी की वाणी को भी परम शुद्ध कहते हैं और आचार्यों की वाणी को भी परम शुद्ध कहते हैं। मोह और राग में क्या फर्क है? यह मेरा दोस्त है वो राग है या मोह है? यदि राग है तो मोह किसे कहते हैं? मोह का लक्षण है पर पदार्थ में सावधानी होना, ये मोह का लक्षण है। और उस सावधानी के अनुसार राग के भी परिणाम होते हैं, द्वेष के भी परिणाम होते हैं। जो पर अभिलाष है वो राग है, राग का लक्षण पर अभिलाष है, मोह का लक्षण पर में सावधानी है। भावों का परिचय किस विधि से करे जिससे आत्मदर्शन हो? भावों का परिचय भावों का बार बार अनुभव करने से या भावों के अनुभव को अवलोकन करने से होते हैं? तो उस परिचय से पहचान होती है, पहले पहचान होने के बाद अनुभव होता है। प्रत्यक्ष सत्पुरुष का कैसे पहचानना? सत्पुरुष को पहचान के क्या लक्षण है बताइए। प्रत्यक्ष पुरुष को उत्कृष्ट पात्रता या अपनी योग्यता पहले होनी चाहिए। ये बात मूल से, मूल तो उपादान से है, अनंत बार समोसरण से लेके सत्पुरुष का योग तो हुआ है, लेकिन अपनी योग्यता और पात्रता नहीं होने से पहचान नहीं हुई है। ये योग्यता और पात्रता आनी चाहिए और उसमें अपने को सजीवन मूर्ति की जरूरत कितनी लगी है, इसकी हमें गरज कितनी है, इस पर ये पात्रता आधारित होती है। इसके बिना ये पहले ये पात्रता नहीं प्रकट होती है। एक देश उपयोग शुद्ध करके स्वरूप शक्ति को ज्ञान द्वार में जानन लक्षण द्वारा जाने, एक देश शुद्ध उपयोग करके, चिद्विलास का वचन है, एक देश उपयोग शुद्ध करके स्वरूप शक्ति को ज्ञान द्वार में जानन लक्षण द्वारा जाने, ये चिद्विलास का वचनामृत है, दीपचंद जी कासलेवाल का। एक देश शुद्ध उपयोग करके क्या अर्थ है, प्रश्न उस पर लिखा है कि इसका अर्थ क्या है। तो एक देश शुद्धोपयोग मैंने जो उपयोग है उसमें निर्मलता होने से कुछ अंश में, देश माने अंश, कुछ अंश में निर्मलता होती है तो ये एक देश शुद्धोपयोग होता है। जैसे कि ज्ञान द्वार में परिणमन किसका है? ज्ञान शक्ति का, ज्ञान स्वभाव का। तो ज्ञान द्वार मैंने ज्ञान का पर्याय, ज्ञान उपयोग, उपयोग अपने आप में कुछ निर्मलता में आकर के अपने स्वभाव को ग्रहण करे, उसको ज्ञान लक्षण द्वारा स्वभाव का ग्रहण करना कहने में आया है। एक देश शुद्ध उपयोग में निर्मलता लेना है। दूसरा प्रश्न, भावना प्रधानी न होकर अभिप्राय प्रधानी होने से योग्यता सहज ही होती है, ये वचनामृत है पूज्य सुगानी जी का। द्रवदृष्टि प्रकाश में ये न्याय उन्होंने दिया है कि भावना प्रधानी न होकर के अभिप्राय प्रधानी होना। अभिप्राय बदलता है तो भावना अनुसार स्वतः पर्याय होती है। पहले अभिप्राय बदलता है फिर योग्यता सही होती है। पहले योग्यता हो जाए और अभिप्राय उल्टा विपरीत रह जाए ऐसा कभी नहीं बनता है, क्योंकि अभिप्राय के साथ श्रद्धान का संबंध रहता है। इसलिए पहले अभिप्राय को ठीक करना चाहिए। परिणाम की भूमिका में अभिप्राय का कितना महत्व है इस पर तो अपने आत्म जागृति में पूरा आर्टिकल आ चुका है 3-4 अंक में, तो बहुत जगह ये विषय पर ध्यान देना योग्य है। हमको हमारा अभिप्राय की विपरीतता का तो पता ही नहीं चले और हम भावना रखे कि हमको वो खुश हो जाए तो अच्छा है, ये हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं नहीं बन सकता है। ये विनोद भाई के प्रश्न थे। हम मुमुक्षुओं को अभी खाने का भी विवेक नहीं है, खान पान खाने पाने का भी विवेक नहीं है, पानी छान कर भी पीने का विवेक नहीं है। जमा के हम मनुष्य पर्याय में पानी छान कर पीने की क्रिया कर सके हैं तो क्या ऐसे मुमुक्षुओं को स्वपर का विवेक हो सकता है क्या? स्वपर का विवेक तो पूर्ण शुद्धि का ध्येय पैप के बाद ही होता है। जिसको पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य हो ध्येय हो उसको एक भी अपराध करने का अभिप्राय नहीं होता, छोटा सा भी दोष करने का अभिप्राय हो उसको पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य और ध्येय है ऐसा बन सकता नहीं। मुमुक्षुता का प्रारंभ वहां नहीं बनता। तो दोष तो आचरण में भूमिका अनुसार होते हैं, लेकिन पहले जिस क्रम से हमें मुमुक्षुता में आना चाहिए उसी क्रम से, जैसे गुरुदेव ने हमको सूत्र दिया कि पूर्णता के लक्ष्य से ही मुमुक्षुता की शुरुआत होगी, इसके पहले होने वाली नहीं है। फिर जो आगे के परिणाम है जो मुमुक्षुता के योग्य होते हैं वो स्वतः ही होते जाएंगे। इसलिए जैसी गुरु आज्ञा है उसी को ही अनुसरण करें। दूसरे प्रकार से या दूसरे जगह हम भजन रख करके मूल बात को गौण नहीं करें। कर्म लब्धि में जीव ने जो सात तत्वों का निर्णय व ज्ञान किया है वो यथार्थ ज्ञान है, कृपया स्पष्ट कीजिए। कर्म लब्धि के परिणाम तो केवल ज्ञान गोचर है और वो शास्त्र पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले से कोई अपेक्षा नहीं रखता। ये तो शास्त्र पद्धति है, सात तत्वों का परिज्ञान करना, इसमें यथार्थता होना अयथार्थता नहीं होना। लेकिन मूल में जो आत्मदर्शन का मार्ग है उसमें तो त्रियंश भी आते हैं। क्या वो सात तत्व का परिज्ञान करता है फिर कर्म लब्धि में आता है कि ऐसा नहीं? सात तत्व के निर्णय वाले परिणाम तो बुद्धि गोचर होते हैं और कर्म लब्धि के परिणाम तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि खुद को ही पता नहीं होता है, केवल ज्ञानी को पता रहता है। तो इसका कोई संबंध नहीं है। इतना जरूर है कि जो शास्त्र पढ़ते हैं उनको तो इसकी यथार्थता होनी जरूरी है। विप्रयास भी रह जाए, विपरीतता भी रह जाए और कर्म लब्धि के परिणाम भी आ जाए ऐसा कभी बनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को तो यथार्थता के विषय में पूरा पूरा सावधान होना चाहिए। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, अनुगुण गुण के पिंड को ध्रुव अपरिणामी कहा जाता है। तो गुणों में परिणमन है या नहीं अपरिणामी परिणमन करता है या नहीं, वस्तु स्थिति विस्तार से समझाएंगे। ये जो गुण है वो गुण रूप रहकर के परिणमन होता है, परिणमन होता है वो पर्याय है, वो गुण नहीं है। गुण गुण रूप रहकर के पर्याय का परिणमन होता है, गुण का और द्रव्य का। और ध्रुव अपरिणामी कहा जाता है, वो त्रिकाली स्वभाव है। और जो परिणामी परिणमन करता है वो प्रमाण का विषयभूत पदार्थ की बात चली है। ऐसे दोनों की अपेक्षा अलग अलग है। ये वस्तु विज्ञान है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका सृष्टि समझ करनी चाहिए, इसका ज्ञान करना चाहिए कि गुण क्या है, द्रव्य क्या है, वो क्या है, ये सब जो है शुद्धि अशुद्धि क्या है, इसके धर्म क्या है, ये वैज्ञानिक तौर से इसकी समझ करनी चाहिए। भगवान आत्मा पर को जानता ही नहीं है, सरल भाषा में ज्ञान कराएंगे, देवास से जमल जाएंगे, देवास से जमल जाएंगे। भगवान आत्मा पर को जानता नहीं है, वो सापेक्ष कथन है। वास्तव में भगवान आत्मा पर को भेदता नहीं है, फिर भी अपने अस्तित्व में अपने को जानने को उपयोग जाता है। जहाँ दूसरे का अस्तित्व नहीं मालूम पड़ता तो वहाँ पर को नहीं जानता, लेकिन सर्वथा भगवान आत्मा पर को नहीं जानता है, ऐसी कोई वस्तु स्थिति नहीं। सपर प्रकाशक शक्ति होने से और भेद ज्ञान करने की प्रक्रिया भी पर को जान पर को पर रूप में जानने की है। पर को जानना दो प्रकार से होता है, पर को पर रूप में और पर को स्वरूप में। पर को पर रूप में जानना सही है, पर को स्वरूप में जानना मिथ्या है बस। लेकिन सर्वथा नहीं जानना होता तो भेद ज्ञान का विषय रहता नहीं है। लेकिन जो भेद ज्ञान पूर्वक अपने अभेद स्वरूप को एकाकार होकर के ज्ञान रस में निमग्न होते हैं, जहाँ कोई पर विषय रहता ही नहीं है अनुभव में, वेदन में, तो कहते हैं ज्ञानी के पर को हम जानते नहीं है। लेकिन इसकी यथार्थता वो है कि पर को नहीं जानते हैं इसका मतलब कि विषय नहीं करते हैं। जब हम हमको अनुभव करते हैं तब, लेकिन जानते ही नहीं ऐसे लेंगे तो ये वचन भी मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि पर को जानते नहीं है ऐसा जाने बिना कैसे कहा कि नहीं जानते हैं। हाँ, पर को जाने बिना नहीं जानते हैं पर को, वो भी कैसे कहा। तो सर्वथा तो वो बात लागू नहीं होती है। चलते परिणाम का अवलोकन कैसे करें, जिसके परिणाम फलस्वरूप श्रद्धा ज्ञान को ठीक कर सके। ये एक आत्म जागृति का प्रयोग है, जिसमें अपने चलते हुए परिणामों का अनुभव का परिचय करने का प्रयोग चलता है। इस प्रयोग के दौरान परिणाम के स्वभाव के और आत्म स्वभाव के सभी पहलू अनुभव पद्धति से समझ में आता है। समझने की दो पद्धति है, एक विचार पद्धति और एक अनुभव पद्धति। ये जो अवलोकन वाली प्रक्रिया है ये अनुभव पद्धति है। जिसको अनुभव प्रधान मार्ग में आना है उसको अनुभव पद्धति से ही आगे बढ़ना आवश्यक है। अकेले विचार पद्धति से ये बात इसलिए समझ में नहीं आती कि कहीं बात ऐसी ही है कि जिसका प्रयोग किए बिना भाषा गोचर नहीं होने से समझ में आई सकती नहीं। इसलिए कृपाल देव ने यह कहा कि शास्त्र में मार्ग कहा है, मर्म तो ज्ञानियों के
हृदय में रहा है। यही कारण से है कि प्रयोग वाली बात तो भाषा गोचर होती नहीं, कि तो ज्ञाने खुद ही प्रयोग करके इस बात को दिखाते हैं, पर दिखाते हैं तो समझ में आते हैं, पर खुद ही उसे दिखाते हैं इस प्रकार के प्रयोग में जाता है तब समझ में आता है। तो ये प्रयोग देखने से प्रयोग करने की हिंट मिलती है, कुछ संकेत मिलता है कि इस तरह से प्रयोग करो। 172 का पत्र है, बहुत सुंदर है, पढ़ने लायक है। इस पत्र पर वजन बहुत दिया है कृपालु जी ने, क्योंकि पत्र के अंत में तो इस तरह लिखते हैं कि सर्वकाल यही कहने के लिए जिंदा रहने की इच्छा करने वाला रायचंद की वंदना, ऐसा करके नीचे लिखा है। कितना वजन दिया है कि सर्वकाल के लिए मुझे यही कहना है। तो क्या कहना है सर्वकाल के लिए? कि निरंतर उदासीनता का क्रम का सेवन करना, जगत के सुख की आशा और अपेक्षा को छोड़ करके उदासीन हो जाना, कहीं सुख है ही नहीं, और सत्पुरुष के भक्ति के प्रति लीन होना। सही भक्ति होगी तो उदासीनता आएगी। हम भक्ति भी करें और रंग राग में भी उलझे रहे, ये भक्ति अब ऐसी होती नहीं है। भक्ति स्वयं ऐसी चीज है कि उससे सहज वैराग्य, सहज विरक्तता आए बिना रहती है। सत्पुरुष की भक्ति के प्रति लीन होना, सत्पुरुषों के चरित्र का स्मरण करना, सत्पुरुष के लक्षण का चिंतन करना, कैसे वो लक्षणधारी होते हैं, सत्पुरुष के मुखाकृति का हृदय से अवलोकन करना, अवलोकन करना नहीं कहा, हृदय से अवलोकन करना, अंतर के उंडान से अवलोकन करना, उसके मान वचन काया की प्रत्येक चेष्टा के अद्भुत रहस्यों का फिर फिर बार बार निरिध्यासन करना, अवलोकन करना, चिंतन करना, स्मरण करना, लीन होना, निधिध्यासन करना। देखो शब्द कितने बदलते हैं। निधिध्यासन शब्द वेदांत का प्रचलित शब्द है, हमारे जिनागम में इसका कम प्रयोग है। निधिध्यासन को कहते हैं विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करना। वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे हंसते हैं, ऐसे गंभीर होते हैं, ऐसे विरक्त होते हैं, ऐसे इनकी चेष्टा होती है मन की, वचन की, काया की, उसको विजुलाइज करना है, उसको निधिध्यासन कहते हैं। और उन्होंने जो भी कहा है सर्व सम्मत करना, उन्होंने जितना सम्मत किया है उतना का उतना हमने सर्व सम्मत करना, कुछ अंश में भी उसमें फेरफार करना नहीं है। यह बात ज्ञानियों के हृदय में रही हुई निर्वाण के कारण, निर्वाण के अर्थ मान्य रखने योग्य, श्रद्धा करने योग्य, बार बार चिंतन करने योग्य, प्रतिक्षण प्रति समय उसमें लीन होने योग्य परम रहस्य है। देखो परम रहस्य ने कहा, परम रहस्य है, और यही सर्वशास्त्र का, सर्व संतों के हृदय का और ईश्वर के घर का मर्म पाने का महामार्ग है। मार्ग नहीं है, ये महामार्ग है। अद्भुत बात क्या है, ये तो इसमें आए उसको पता चलता है, ऐसे पता शब्दार्थ से पता नहीं चलता है, इस लाइन में आने वाले को इसका पता चलता है कि क्या प्रकार है परिणाम का। और ये समों का कारण कोई विद्यमान सत्पुरुष की प्राप्ति है, परोक्ष वाली बात नहीं लिया है। ये समों का कारण कोई विद्यमान सत्पुरुष की प्राप्ति और प्राप्ति को संयोग और उसके प्रति अविचल श्रद्धा यह है। अभी क्या लिखे, आज चाहे तो कल, चाहे तो लाख वर्ष के बाद, चाहे तो इससे पहले या इसके बाद, अथवा हुई सूझने से, ऐसा ऐसी सूझ आने से, यही प्राप्त होने से छुटकारा है, ऐसी दशा में आए बिना छुटकारा कभी होने वाला नहीं है। देखो ये हालत होनी चाहिए, इसी को मुमुक्षुता कहते हैं। ये हम शास्त्र पढ़ते हैं इसलिए मुमुक्षुता हो जाते हैं, सौनगर जाते हैं इसलिए मुमुक्षु हो जाते हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है, ये मुमुक्षुता है। वो भी जरूरी है, ऐसी छटपटाट वाले आकुलता भी आवश्यक है। ऐसी आकुलता होगी तो निराकुलता होगी, वरना निराकुलता भी आने वाली नहीं है।
निराकुलता कारण आकुलता होगी।
ये दूसरे प्रकार की है, वो प्रकार जगत के पदार्थों को जुटाने की वाली आकुलता नहीं है, ऐसी बात है। ऐसा है, तर्क वितर्क नहीं करना है हमें इस लाइन में प्रवेश करना है, इस भाव में आना है। श्री कृष्ण को भजने के लिए गोपी बनना पड़ेगा क्या? हाँ, ऐसी बात है। और ऐसी जुड़ना हुए बिना मार्ग की दिशा का एक अंश का भी पता नहीं लगता, ये वचनामृत है कृपा गुरुदेव का। यही सूझने से, यही प्राप्त होने से छुटका है। सर्व प्रदेश से मुझे तो यही सम्मत है, सर्व प्रदेश से, मेरे एक प्रदेश भी इसमें कुछ दूसरी बात करता, प्रदेश प्रदेश से ये पुकार आती है हमारे, ऐसा कहते हैं। बस यही सर्वकाल यही कहने के लिए जिंदा रहने, जिंदा जिंदगी चाहने वाला रायचंद का वंदना, ऐसा करके कितना वजन दिया है, वो एक मूल्यांकन करने जैसी चीज है। तो ये चलता था कि दृष्टांत दे करके विधि को समझाने की कृपा करें। दृष्टांत क्या है? अपने परिणाम तो चल ही रहे हैं, जो प्रत्यक्ष परिणाम चल रहे हैं, इसका दृष्टांत हमें क्या लेना है? परोक्ष के परोक्ष विषय को समझाने के लिए दृष्टांत देना आवश्यक होता है, लेकिन जो परिणाम वर्तमान में चल रहे हैं, वो चलते हुए परिणाम को हम अवलोकन में लेके हमें क्या अनुभव हो रहा है? प्रयोग तो प्रयोग है, प्रयोग करने से ही उसका पता चलता है। क्या प्रयोग को भी हम थियोरेटिकल साइड में ले जाना चाहते हैं पर उसी ढंग से समझना चाहते हैं, तो हमारी पुरानी जो पद्धति है उसमें से हम बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। शंका, पर द्रव्यों में जो हमारी रुचि पड़ी है, इसे उसे हटकर स्व में रुचि कैसे बढ़ाएं? पर द्रव्यों में हमारी रुचि पर में सुख बुद्धि के कारण से है, हमें सुख की जरूरत है और वहाँ हमारा सुख का निश्चय पड़ा है, इसलिए पर की जरूरत पूर्वक पर द्रव्य की रुचि चलती है। रुचि का मूल जरूरत में पड़ा है, स्वद्रव्य में सुख है और इस आत्मिक सुख की हमें जरूरत है, तो स्वद्रव्य की रुचि होगी। रुचि का जन्म कहाँ से होता है? जरूरत में से होता है, सुख की जरूरत। कौन सा? गुण से उत्पन्न होने वाले सुख या अवगुण से उत्पन्न होने वाले या कहलाने वाले सुख, किसकी जरूरत है? बस उसकी रुचि हो जाएगी। वर्तमान में हमारा बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, पुरुषार्थ की बात छोड़ो, वर्तमान में हमारे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, जबकि हमारी विपरीतता सब चली जाए। ठीक, प्रश्न। सबसे पहले हमें किससे भी ज्ञान करना है और कैसे? भेद ज्ञान करने का स्थान तीन है शास्त्र पद्धति से, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। लेकिन सबसे भेद ज्ञान का प्रयोग भाव कर्म से होता है। राग से भिन्न ज्ञान में आत्मा का भिन्न अनुभव करना, ऐसा सबसे पहले भेद ज्ञान तो ग्राग से करना है। स्वतः राग के विषयभूत जो नौ कर्म है वो स्वतः भिन्न हो ही जाएंगे। लेकिन ऐसा भेद ज्ञान का स्टेज कब आता है वो भी एक विचारणीय प्रश्न है। कोई सीधा ही कर लेता है बिना योग्यता, ऐसा होता नहीं। इसका संकेत हमें मिलता है समय सार के 17-18 गाथा में कि जो मोक्षार्थी होता है, मोक्ष कामेर, मोक्ष की कामना वाला जो है, यही भेद ज्ञान के स्तर पर प्रयोग कर सकता है, उसका प्रवेश होता है। जिसको पूर्णता का लक्ष्य नहीं है या मोक्ष की कामना नहीं है, वो भेद ज्ञान कर्म पद का प्रयोग करने का काबिल नहीं है, योग्यता वाला नहीं है, इसलिए हो नहीं पाएगा। यदि बाहर में कोई वस्तु अच्छी लगती है, अर्थात बाहर से सुख आता है, तो उसे कैसे तोड़े? देखो वहाँ वास्तव में सुख आता है कि कल्पना होती है? वस्तु अच्छी लगती है, वो अच्छी है तो अच्छी लगती है या अच्छाई की कल्पना करी है, की है हमने? क्या किया? वस्तु कोई अच्छी भी नहीं, बुरी भी नहीं है, लेकिन हम कल्पना करते हैं अच्छाई का, तो ये हमारा विपर्यास है, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। इसलिए वास्तविकता पर आने से ही ऐसा ऐसा कल्पना वाला सुखाभास छूटता है। भाव भाषण कैसे हो दोबारा समझाइए। भाव भाषण अवलोकन से होता है। जिसका जिन जिन भावों का अवलोकन होता है, अवलोकन का प्रयोग के दौरान भाव भाषण आता है। भाव भाषण आने के लिए भाव भाषण एक पहचान है। भाव भाषण क्या चीज है? एक पहचान है, और पहचान का प्रोसेस परिचय के अलावा दूसरा कोई नहीं है। आत्मा का परिचयी बनना कृपाल देव का वचन है। आत्मा को जानने के लिए आत्मा का परिचयी होना, परिचय बिना भाव भाषण नहीं, भाव भाषण बिना अनुभव नहीं होता है। प्रमाण में आने के बाद जो शुद्धने का पक्ष हम लाएंगे वह तो विकल्पों में ही होगा ना, फिर उसके बाद निर्विकल्प कैसे होए? प्रमाण में आने के बाद मतलब क्या? बाद में अनुभव होता है तब ज्ञान प्रमाण होता है, इसके पहले ज्ञान प्रमाण नहीं होते। इसलिए प्रमाण में आने के बाद शुद्ध नहीं का पक्ष हम लाएंगे तो सवाल पैदा नहीं होता है। फिर भी जिसका प्रश्न है वो स्पष्ट करते हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं। दर्शन मोह होने रूप परिणाम के लक्षण क्या क्या होते हैं? आत्म जागृति में दिए हैं करीब 25-26 दर्शन मोह के, तो पर्याय का कर्तृत्व उसमें छपा हुआ है। ठीक, अच्छी बात, ले लीजिए। कौन से प्रश्न संख्या है बताइए। कितने? 36 परिणाम में दर्शन के लक्षण कौन कौन से हैं, ये प्रश्न उठा करके उत्तर दिया है वहां भी कि आत्मीय पदार्थ अनात्मीय पदार्थ में आत्मबुद्धि, रागादि में कर्ता बुद्धि और सुख बुद्धि, ज्ञेय तत्वों में जो मात्र ज्ञेय है इष्ट अनिष्ट नहीं है उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि, परसत्ता में और राग में एकत्व बुद्धि, पर की मुख्यता होना, विभाव की ऋषि होनी, दुख में भी सुख की प्रतीति होनी, खुदेवादिक की श्रद्धा कृत कारित अनुमोदना पूर्वक होना, वीतराग देवादि का निषेध होना कृत कारित अनुमोदना पूर्वक, लोग संज्ञा होना, उनका अवर्णवाद होना, अपसिद्धांत यानी विरुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन करना, निरूपण करना, ज्ञान के उघाड़ की रुचि होना, मिथ्या आग्रह का सेवन करना, अहित के परिणाम में हित बुद्धि होना, हित रूप प्रयोजन के प्रति दुर्लक्ष होना, असरलता मैंने वक्रता हठाग्रह होना, दोष का पक्षपात होना, गुणवान के प्रति मात्सर्य होना, ईर्ष्या होते दलन होती है उसको मात्सर्य कहते हैं। पर्याय में एकत्व यानी पर्याय बुद्धि रहना, पर्याय बुद्धि को लेकर ज्ञान या चारित्र या वीर्यादि का श्लोषण रूप पर्याय जो है उस पर वजन रहना, अधिकता रहना, उसकी मुख्यता हो जाना, उदय के परिणामों में चीत नहीं होना, रसयुक्त परिणाम होना, निरस परिणाम नहीं होना, भेद प्रधानता या भेद की रुचि शास्त्र के अध्ययन द्वारा अनेक भेद प्रभेद की रुचि हो जाना, अध्यात्म का व्यामोह होना, कोरा अध्यात्म जिसको कहते हैं अध्यात्म की शुष्कता हो जाना, ये अध्यात्म का व्यामोह है, मताग्रह होना, विपरीत अभिनिवेश पूर्वक तत्व का स्वीकार होना, कल्पित अधिष्ठान होना, मैं ध्रुव हूँ ध्रुव हूँ ध्रुव हूँ भाव भाषण बिना अपरिणामी हो, बिना भाव भाषण कल्पित अधिष्ठान होना, कल्पित ध्येय होना, स्वच्छंद के परिणाम होना, व्यवहार का पक्ष रह जाना, कल्पित साधन का स्वीकार कर लेना, यथार्थ साधन को छुड़ जाए और कल्पित साधन का स्वीकार करना, सद्धर्म यानी स्वभाव की अरुचि होना, कुतुल वृत्ति होना, देश देशावर जाने के बाद वो कुतुल वृत्ति से सब जानने की कुतुल होते हैं, अखबार कहीं टीवी देखते हैं, वो करते हैं कुतुल वृत्ति है, वो परुचि है, तो दर्शन मोह के परिणाम है आदि लक्षण दर्शन मोह के कितने लिए हैं, वो जैसे जैसे होते हैं अपने आप में उसको ऑब्जर्व करके अवलोकन करके उसको ठीक करना चाहिए। सत्य बोध श्रवण के पीछे मुमुक्षुओं के अपने परिणामों में क्या क्या तलाश करनी चाहिए, क्या क्या अवलोकन करना चाहिए, इसके पीछे ही है, इसके ऊपर है 32। सम्यक बोध श्रवण होने के पश्चात मनुष्यों को अपने में क्या क्या जांच अथवा अवलोकन करना चाहिए, ठीक है, तो चर्चा में ये बात चल गई थी तो वहां एक मनुष्य भाई को लिखा दिए थे, माँ को लिखाए थे, तो ये 8 मुद्दे हैं, 8 मुद्दे लिखाए थे उनके शाम को घर पर। एक तो सुख और साता में, बाह्य सुख और बाह्य साता में कितनी अपेक्षा वृत्ति हमारे रहा करते हैं, क्या हमको कितना रस आता है, कितनी प्रीति होती है, उसका अवलोकन करना, क्योंकि हमको जो सत्य बोध श्रवण हुआ है इसके वो खिलाफ है, ये परिणाम इसके विद है,
अथवा उसमें पहले पहले के परिणाम की अपेक्षा किंचित फर्क दिखता है, अर्थात वैसे प्रसंगों में उदासीनता उत्पन्न होती है या नहीं होती है, इसका अवलोकन करें, विचार करें, इसका अवलोकन करें। जब चलता हो तब उसे एवं अपेक्षा वृत्ति और रस के कारणों का और उन कारणों के कारणों का सूक्ष्मता से जांच करना चाहिए। अगर हमें रस आया, किस कारण से आया, उस कारण का भी क्या कारण है, मैंने अभिप्राय इसके पीछे कौन सा है हमारा है, इस सबका अवलोकन करना चाहिए, बारीकाई से सूक्ष्मता से इसका अवलोकन करना चाहिए। जब दूसरा, जब अन्य जीव के दोष धने में आए तब उसके प्रति तिरस्कार वृत्ति स्फुरित होती है या नहीं, इसका अवलोकन करना है। दोस्त अपने दोस्त को तो देखता नहीं, तो दूसरे को दोस्त को देखता है तो बहुत तिरस्कार वृत्ति हो जाती है, क्या द्वेष भाव हो जाता है, कि अपना ऐसे द्वेष भाव का अवलोकन करके उसको खत्म करना। चलता हो तब अवलोकन करने का मतलब है, तो चलता हो तब सत्पुरुष के शरण शरण हेतु शोधक वृत्ति रहती है या नहीं। यहाँ खाते हैं, पीते हैं और आराम से सो जाते हैं, कोई खोज हमारी है या नहीं है इस विषय में, और खोज है तो उसकी तीव्रता कितनी है, कि वैसे ही चलता है थोड़ा बहुत विकल्प आता है फिर भूल जाते हैं इस बात, उसकी तीव्रता भी होनी चाहिए। चौथा, मार्ग की अप्राप्ति के कारण बेचैनी रहती है या नहीं। ऐसा मनुष्य भव मिला है फिर मार्ग प्राप्ति नहीं हुई तो इसकी बेचैनी आती है या नहीं आती है, क्यों दुख नहीं होता है? अगर दुख नहीं होता है तो जरूरत नहीं है। संसार को किस भांति खोटा मान्य किया, इन्हें संसारिक प्रसंगों में सारभूतपना कितना लगता है, ये भी काम की चीज है, ये भी काम की चीज है, इसका भी काम है, ऐसा रहता है क्या? निसार लगता है, ये झूठा है सब, मेरे आत्म में सुख का कोई कारण नहीं संसार में, मेरे में कुछ आएगा नहीं, प्रवेश ही नहीं हो सकता, स्पर्श ही नहीं हो, फिर काम की चीज कहाँ रहे, उसकी तलाश करना अवलोकन कर। अपने दोष दिखलाने वाले के प्रति नापसंदगी का भाव आ जाता है या वह हित बुद्धि पूर्वक उपकारी लगता है, उसका तरह कोई हमारे क्षति दिखाते हैं, दोष दिखाते हैं तो हमें ठीक लगता है या अठीक लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो बात हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये तो हमारे उपकारी है, जो दोष हमारे नजर में नहीं आते थे वो बताने लगे। बोध श्रवण के पश्चात उससे आत्मा को कितना गुण हुआ, लाभ हुआ, इसका भी अवलोकन करना, कि हमने जो बात समझी है वो हमारे परिणमन में लागू किया, लागू करने का प्रयास किया कि बस सुन करके रख दिया अलमारी में, ऐसी कोई आत्म जागृति हमें कितनी प्रवृत्ति है, उसका भी अवलोकन करना। जिन पदार्थों में अपनत्व होता है वहां मूढ़ता हुई है ऐसा हमें लगता है क्या, खास करके जो भी उदय है परिवार के संपत्ति का, जो भी मकान इज्जत आबरू, हाँ उसमें मेरापन लगता है, अपनत्व होता है, मेरा लड़का है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मूढ़ता है, आत्मा का है नहीं किसी का, लेकिन ये आत्मा की मूर्ता है, ऐसे मूर्ता लगती है क्या, या मिठास आती है, अपने वाले में मिठास आती है लेकिन कोई अपना वाला तो है, तो उसका भी अवलोकन करना कि ऐसे मूर्ता होने पर भी हमें क्यों नहीं लगती है, क्यों समझ में नहीं आती है, कैसे ऊपर से जाते हैं, हमने क्या सुना, सतबोध सत्श्रवण में हमें क्या सुना, कुछ सुनाई नहीं। जब हमें रस आता है तो हमने कुछ सुनाई नहीं। तो ऐसे परिणाम चलते हो उस वक्त उसका अवलोकन आए तो रस टूटे बिना रहने। तीसरा, आत्मस्वरूप में वर्तमान ज्ञानोपयोग लीन हो गए इसलिए कैसी पूर्व भूमिका होती है। आत्मस्वरूप में उपयोग लीन होने के पहले आत्मस्वरूप का भाव भाषण होने से जिसकी अनंत अनंत महिमा है, जो अनंत महिमा का धारक है, उसकी अनंत महिमा अंतर से भाव भाषण में से अंतर्ज्ञान में से मर पड़ती है और उस महिमा की धुन में ही वो रहा करता है। आत्मस्वरूप की महिमा धुन में से जो बाहर निकल नहीं सकता है उसी को लीनता होती है और वो वहां तक है कि स्वरूप प्रति के विकल्प में भी उनको ये बाधक लगता है, ये विकल्प भी उनको बाधक लगता है, क्योंकि ज्ञान तो भाषिक वर्ग में ऐसा हो तो ज्ञान विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। ये विकल्प तो वहां अंतराय करता है, लिंगता है, तो अंतराय दिखता है, ऐसे परिणाम होते हैं तो वो लिंगता हो जाती है। कोई तो अंतराय नहीं दिखता है तो परिणाम नौ सालों में हमारे यहां से खिसकने की वृत्ति जितनी होनी चाहिए इतनी नहीं हुई है। ऐसी भूमिका में आत्मस्वरूप में उपयोग की लिंगता बनती है, इसके पहले कभी नहीं बनती। पारियामिक भाव के तीन भेदों में जीवत्व को आपने परम पारिणामिक भाव कहा है, जबकि हमने सुना है कि ये तीन भेद तो अशुद्ध पारिणामिक भाव के हैं और इसमें जीवत्व का जो दस प्राण से जीव से उसे जीवत्व में लेना तब शुद्ध पारिणामिक भाव में परम पारिणामिक भाव लेना तो यहाँ कहाँ तक ठीक है। ठीक बात है, परम पारिणामिक भाव वही पारिणामिक शुद्ध पारिणामिक है। भव्यत्व जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व ये तीनों ही अशुद्ध पारिणामिक के भेद हैं। दो की बात चली थी, तीसरी बात छूट गई थी। सही बात है, जीवत्व है तो व्यवहार जीवत्व के दस प्राणों के जीवत्व की बात है और ये अशुद्ध पारिणामिक है, शुद्ध पारिणामिक नहीं है। ये बात सही है। आपकी तत्व चर्चा में निर्विकल्प प्रमाण का शब्द आया था तो क्या इसका अर्थ वही है जो पंचाध्यायी की 762 गाथा के अनुभव न नित्य न अनित्यता का है। अनुभव को तो आपने दृष्टि का विषय बतलाया तो क्या निर्विकल्प जब सम्यक दर्शन और स्वानुभव शुद्धोपयोग के काल में एक साथ त्रिकाली स्वभाव का अवलंबन और पर्याय में ससंवेदन रहता है फिर भी दोनों में भेद नहीं पड़ता है, युगपत अनुभव रहता है, उसी को निर्विकल्प प्रमाण कहते हैं। वो उभय स्वरूप है, द्रव पर्याय का उस युगपत ज्ञान है, जबकि जो त्रिकाली स्वभाव है वो अनुभव स्वरूप है। न उसमें द्रव का भेद है, न गुण का भेद है, न पर्याय का भेद है, फिर भी द्रव गुण पर्याय तीनों में व्यापक रूप अपना अस्तित्व रखता है। इस पंचाध्यायी की 762 गाथा में उसी की बात चली है और वहां नित्य को व्यवहार के विषय में डाला है। अनित्य अंश तो व्यवहार नहीं का विषय है ही, किंतु नित्य भी व्यवहार नहीं का विषय लिया है और निश्चय का विषय अनुभव स्वरूप है। वही निश्चय का विषय कहो या दृष्टि का विषय कहो एक ही बात है। निर्विकल्प प्रमाण क्या शुद्धोपयोग के काल में ही होता है या सविकल्प दशा में भी होता है, कृपया खुलासा करें। सविकल्प दशा में निर्विकल्प प्रमाण कैसे कहेंगे, भगवान को निर्विकल्प दशा के कारण से ही कहते हैं, फिर सविकल्प दशा में आते हैं तो उसको सविकल्प प्रमाण कहने में आता है। प्रयोजन भूत पदार्थों में टोडरमल जी ने नौ तत्वों की यथार्थ प्रतीति करने को कहा, सो प्रतीति तो अहम रूप होती है। तो प्रतीति तो अहम रूप होती है जो कि एक ही तत्व में होती है, स्व में या पर में। तो यहाँ प्रतीति का क्या अर्थ लेना है खुलासा करिए। यहाँ प्रतीति का अर्थ विश्वास है। यहाँ ज्ञान के पर्याय को प्रतीति कही है, श्रद्धा के पर्याय को नहीं कही है। स्पष्ट बात वो है कि नव तत्व ज्ञान का विषय है, श्रद्धा का विषय नहीं है। फिर भी नव तत्व तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा जो सूत्र है तो ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन की परिभाषा है। श्रद्धा प्रधान सम्यक दर्शन की परिभाषा में तो श्रद्धा स्वयं के मूल स्वरूप को श्रद्धान में लेता है, लेती है, उतनी सी बात है। इससे आगे कोई बात नहीं है, इसमें कोई भेद प्रभेद नहीं होते। नव तत्व के भेद प्रभेद ज्ञान में होते हैं, श्रद्धान में नहीं होते हैं। इसलिए नव तत्व की प्रतीति यानी श्रद्धा ऐसा कहते हैं तो वो ज्ञान प्रधान विश्वास करने की बात है, ज्ञान करके ऐसा समझना है। श्रद्धा गुण की पर्याय प्रतीति कहते हैं, कोई ऐसा एकांत नहीं लेना है। एक बात और भी स्पष्ट कर दें कि जिन जिन शब्दों के अर्थ रूढ़िगत अर्थ जो है उसकी पकड़ हमें कभी नहीं करनी है। कहां किस प्रकरण चल रहा है और इस प्रकरण के अनुसार इसका अर्थघटन क्या होता है किस शब्द का, ऐसा ओपन माइंडेड रहना है, ब्रॉड माइंडेड रहना है। एक प्रतीति मैंने श्रद्धा प्रतीति मैंने ज्ञान की पर्याय वो बात, ऐसा दो बात आती है तो बैठेगी नहीं फिर। इसलिए दोनों अर्थ होता है, ज्ञान के पर्याय को विश्वास आता है उसको भी प्रतीति कहते हैं और श्रद्धा के पर्याय को भी प्रतीति कहने में आता है। और पंचाध्याय में तो श्रद्धा रुचि प्रतीति सबको ज्ञान के पर्याय के लिए ये बात चली है। सम्यक दर्शन के पहले होने वाले भावभाषण वाले जीव के परिणामों के पंचाध्याय में उत्तरार्ध में करीब 400 के पहले पहले क्या गाथाओं में है। तो हमने गुरुदेव को प्रश्न किया था कि हम ये ऐसे सब शब्द जो श्रद्धा के रूप में प्रचलित है और यहाँ शास्त्रकार उसको ज्ञान के पर्याय कहते हैं तो इसका क्या आशय क्या है कहने वाले का, कहा कि वो ठीक कहा है, वो ज्ञान की ही पर्याय है। क्यों कि भाव भाषण हुआ तो विश्वास आया तो मैं ऐसा ही हूं, भाव भाषण आया तो रुचि हो गई अनंत गुण के निधान के, भाव भाषण आया तो प्रीति हो गई, प्रेम हो गया अनंत प्रेम की मूर्ति की, प्रेम का प्रेम हुआ। तो प्रीति प्रतीति रुचि विश्वास श्रद्धा ये सब ज्ञान के पर्याय है भाव भाषण के काल में, क्योंकि हमारे निर्विकल प्रतीति रूप सम्यक श्रद्धांत तो हुआ ही नहीं, श्रद्धांत तो भी मिथ्या रही है। इसलिए सभी पर्यायों को ज्ञान के पर्याय कहने में आई है वो सही है। इसलिए कोई भी शब्द का अर्थ पकड़ करके बैठ जाना नहीं चाहिए। श्रद्धा गुण की पर्याय प्रतीति कहते हैं तो यह क्या क्या यह उभय रूप ही होती है या अन्य रूप भी होती है? नहीं, यहाँ जो बात चली है वो ज्ञान के पर्याय की चली है, श्रद्धा गुण के पर्याय की नहीं चली है। और टोडरमल जी का कथन ही शब्द के ज्ञान प्रधान है, श्रद्धा प्रधान कथन नहीं आते। हाँ, श्रद्धा प्रधान कथन है दृश्य प्रकाश में, और तो सब ज्ञान प्रधान ही कथन ज्यादा होते हैं। क्या प्रतीति का ज्ञान प्रधान कथन भी होता है? हाँ होता है, यदि हो तो किस प्रकार। ये सात तत्वों का श्रद्धा वही सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन का ज्ञान प्रधान ही कथन है। और ये तत्वानुशीलन में दीक्षा 36 में तो सब बात लिया है, 36 प्रकार के जो दीक्षा कैसे होती है कि श्रद्धा का श्रद्धा प्रदान, ज्ञान प्रदान, चारित्र प्रदान, पुरुषार्थ प्रदान, सुख प्रदान, पांच अपेक्षा से कथन आता है। ऐसा ज्ञान का पांच अपेक्षा से आता है, ऐसा पांचों का पांच अपेक्षा से 25 विवेक्षाएं कैसे होती है, वो सब प्रकार होते हैं कथन के, वो समझ लेना। तो हमारा समय हो गया है, इतने जो परिचय रह गए हैं पेंडिंग, कल के लिए रखें।